ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था नदियों को जोड़ने का, महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना की भी प्रधानमंत्री ने आज आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिवस है। उन्होंने इस अवसर पर कई योजनाओं का उद्घाटन किया।
एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहाँ हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बंद बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ।
आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, क्या परियोजनाएं हैं, और खास ध्यान दिया जाएगा केन बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना पर, जिसका सपना किसी समय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। विनय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी नमस्कार।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो ये केन बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना है, यह क्या है और इससे क्या क्या आयाम निकल सकते हैं?
जितनी भी परियोजनाएं आज जो प्रधानमंत्री ने जिसकी शिलान्यास रखी, इनॉग्रेशन वगैरह किया, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केन बेतवा नदी परियोजना है, जिसको नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के नाम से जाना जाता है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि यूपी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, अगर इसको आप देखें तो बुंदेलखंड का रीजन है ये, और बुंदेलखंड काफी सूखाग्रस्त रहा है। और आपने जैसे बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये एक सपना था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज उनकी 100वीं जन्म शताब्दी का भी आज दिवस है और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने गुड गवर्नेंस डे के तौर पर सुशासन दिवस को भी अपनी सरकार को समर्पित कर रखा है। तो एक ऐतिहासिक दिन भी है आज। और दूसरा कि जो ये पिछड़े क्षेत्र जितने थे, और 2002 में जब अटल जी ने इसके बारे में चर्चा की थी, और उस समय 2002 में कुछ सूखा की हालातें बनी थी, फेमिन काफी इलाकों में हुआ था, तो अटल जी का एक ये इच्छा थी और सपना भी था कि अगर जिस नदी में बहुत ज्यादा पानी है और ऐसे क्षेत्र जहां पर कम पानी है, क्या उनको किसी तरीके से लिंक करके, जोड़ के, नहरों के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से, अगर उस पानी को, उस जल को ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके जो सूखाग्रस्त है, जहां पर पानी की अभाव रहता है, तो क्या ये संभव है? तो उस समय वाजपेयी जी ने एक टास्क फोर्स भी इसके लिए बनाया था, मगर कुछ ऐसा हुआ कि ये योजनाएं पीछे पीछे चलती गईं। और अभी क्योंकि दो राज्यों का मामला था, तो कभी उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई खिटपिट हो गई या मध्य प्रदेश की तरफ से उतने इनिशिएटिव नहीं लिए गए, मगर अब आज एक ऐसा मौका मिला कि दोनों राज्यों ने मिलकर इसके ऊपर पूरे प्रयास किए, और जो भी इसमें लीगल पचड़े थे, जो कानूनी पचड़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो थे, उन सबको दूर करके केन बेतवा इंटरलिंकिंग जो नदी परियोजना है, जिसको आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परियोजना जो है, इसको आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आज शिलान्यास किया इसका, और इसके ऊपर दौधन बांध भी, जैसे प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे थे, वो बनेगा, और कितना फायदा होगा बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, जिसमें से कई सारे जिले होंगे मध्य प्रदेश के और बहुत सारे जिले होंगे उत्तर प्रदेश के, तो इससे करीब 8.11 लाख हेक्टेयर जो है वो 10 जिलों में मध्य प्रदेश के, वहां पर पानी पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में इसका फायदा मिलेगा।
श्रोताओं, हम विस्तार से आपको इसकी जानकारी दे दे रहे हैं। केन बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की लागत का 90% व्यय केंद्र सरकार और 10% व्यय संबंधित राज्य सरकारें वहन करेंगी। ये परियोजना 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 2000 गांवों के 7 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। केन बेतवा को जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना मध्य प्रदेश के 10 जिलों की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। यह उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा और 2,51,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। और जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि यह मुख्य रूप से परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल स्तर को सुधार करेगी, औद्योगिकरण, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। यहाँ पर इस चर्चा को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे कि नदी जल परियोजना अपने आप में कैसी परियोजना है और इससे किस तरह से देश को कह लें कि लाभ हो सकेगा।
इसमें देखिए कि केन और बेतवा जो दोनों नदियां हैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं और पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वहां से होकर गुजरती हैं और ऐसे इलाके से होकर गुजरती है कि जहां इनके जल को संचयन करना या उस जल को, इस नदी के जल को किस तरह से लोगों तक पहुंच सके और गांवों तक पेयजल की भी जो दिक्कत रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा भी, जो वहां पे भाषण दिया, कि वाटर सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा इशू है
जी, जी,
कि पेयजल का जो अभाव है। और सबको मालूम है कि जो जिले हैं, छतरपुर हो गया, खजुराहो हो गया, पन्ना हो गया, टीकमगढ़ हो गया जो मध्य प्रदेश में है, कितने अभावग्रस्त जिले हैं जहां पर जल की हमेशा पानी की कमी रहती है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट निकला था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर कि अगर हम केन और बेतवा से अगर शुरू करें तो बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हमारे यहाँ, नर्मदा का हम प्रोजेक्ट अगर देख लें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उसका भी जिक्र किया कि वो गुजरात से आते हैं और गुजरात में ऐसे रीजन हैं हम सब जानते हैं कि जहां पर बहुत पानी का अभाव रहता था। नर्मदा कैनाल और सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट सब जानते हैं उसने गुजरात की बिल्कुल स्थिति बदल दी, कायाकल्प कर दी। तो उसी तरीके से अगर हम गंगा को या ब्रह्मपुत्र को या नर्मदा को अगर ना लेकर अगर छोटी नदियों से शुरू किया जाए और ऐसे क्षेत्र में शुरू किया जाए, उसी परियोजना को आगे बढ़ाते हुए मैं समझता हूँ केन बेतवा जो है पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जिसमें इन्वॉल्व होंगे कि जिससे ये देखा जा सके कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में अगर इसका फायदा, इसका लाभ, जैसे आपने स्वयं इसके फिगर्स दिए, अगर वो मिलता है तो फिर ये अन्य नदियों में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी जिक्र किया कि आजादी के 7 दशक से ज्यादा समय हो चुका मगर राज्यों में अभी भी वाटर डिस्प्यूट्स, जल विवाद अभी तक चल रहे हैं। जो कावेरी वाला ट्राइब्यूनल हम सबको मालूम है कितना पुराना विवाद उसमें रहा है दक्षिण के राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो इन सबको देखते हुए मैं समझता हूँ कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स चाहे छोटे स्तर पर शुरू हो, अगर इसको वाटर को बांध पाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक इंजीनियरिंग चैलेंज भी है। वो किस तरह से तकनीक यूज करके हम उसका प्रयोग अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, पेयजल पहुंचाने में, सिंचाई के लिए, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा उदाहरण इससे पेश होगा। अगर केन बेतवा एक हम पहला एग्जाम्पल अगर देख लें अपने देश में कि अगर इन रिवर्स को लेकर, और जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, तो इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट को लेकर, वातावरण को लेकर, वो सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। 44,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सरकार के लिए भी और दोनों राज्यों के लिए भी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
श्रोताओं, काल की शिला पर अपना प्रभाव समय अपने आप किस तरह लेता है उसका नमूना है, उसका उदाहरण है केन बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू किया। 2004 में सरकार के जाते ही यह योजना फिर थम गई। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश किया कि इस परियोजना पर समयबद्ध तरीके से काम हो और फिलहाल तीनों स्थान पर एक दल की, एक विचारधारा की सरकार और सपना साकार हुआ आम लोगों का केन बेतवा नदी जल को जोड़ने के अभियान से। यहाँ पर हम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए आज के दिवस को याद करते हैं और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि सुशासन का दिवस है आज और हम मना रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं सुशासन का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, गांव के स्तर पर किस तरह दिख रहा है आपको?
प्रधानमंत्री ने कहा कि 1100 अटल ग्राम सुशासन सदन
जी 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 जी
उनका भी
उद्घाटन हुआ।
तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जोर रहता है, अगर उनकी कार्यशैली को आप देखें 2014 से लेकर अभी तक, एक तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर काम किया काफी, इस सरकार ने, और दूसरा प्रधानमंत्री स्वयं इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हैं, बहुत माइन्यूटली और बहुत माइक्रो लेवल पर नीचे जाकर जो प्रोजेक्ट्स की जो मॉनिटरिंग होती है पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, उससे ये देखा गया है कि काफी जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट्स का उसमें देरी नहीं हो पाती। तो मैं समझता हूँ कि जो सुशासन की जब बात करती है कोई भी सरकार, और खासतौर पर ये सरकार जब बात करती है प्रधानमंत्री मोदी की, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सब जानते हैं सरकारी योजनाएं बनती, परियोजनाएं बनती हैं, अधर में लटकी रह जाती हैं, ग्राउंड पर कोई उनका असर नहीं देखा जाता, कब इम्प्लीमेंट होंगी पता नहीं, डिलेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो स्वयं इसकी माइक्रो मॉनिटरिंग करते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो सुशासन यही है कि गुड गवर्नेंस टेकिंग द गवर्नेंस टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। तो मैं समझता हूँ कि जो केंद्र सरकार का जो एम्फेसिस रहता है, दोनों राज्य सरकारों को एक साथ जोड़ना, जैसे हम केन बेतवा को भी ले लें, और उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना जिससे कि लोग लाभान्वित हो सकें, सुशासन का, गुड गवर्नेंस का यही एक मैं समझता हूँ कि एक कंस्ट्रक्टिव मीनिंग जो निकाला जा सकता है उसमें, उसका मतलब तो यही निकलता है कि किस तरह से सरकारी योजनाएं परियोजनाएं ग्राउंड पर उनको क्रियान्वित किया जाए, और उसमें केंद्र सरकार ना सिर्फ अनुदान देकर और राशि देकर ना अपना पल्ला झाड़ ले, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, किस तरह से उसके इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है टाइम बाउंड मैनर में। पिछले कई सालों का अगर आप पिछले 2014 से लेकर अब तक कार्यशैली अगर देख लें सरकार की, और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी की,
मैं आपको इशारा करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा समावेशी विकास का, और यह आह्वान किया कि हर आदमी का एक बैंक अकाउंट हो, उसकी पहचान के लिए उसका अपना आधार संख्या से जोड़ दिया जाए, यानी बैंक से आधार लिंक हुआ, एक मोबाइल फोन, एक व्यक्ति की पहचान, और केंद्र से चली हुई राशि आज सीधे उनके खाते में पहुंच रही है, यानी बीच के जितने लैप्सेस थे जहां जहां राशि डूब जाया करती थी वह डूबने रुक गई। यदि हम उद्योग धंधे के स्तर पर देखें तो सुशासन यह हुआ कि उद्योगपतियों के कारोबार शुरू करने के लिए बहुत सारी सहूलियतें इस सरकार ने प्रदान की। सुशासन एक आयाम नहीं बल्कि कई आयाम पर हम देख रहे हैं। यहां पर विनय जी, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि एक और परियोजना ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि हमें दे सके, और किस रूप में यह लाभ पहुंचाएगी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जैसे कहा कि ये जो है ओंकारेश्वर वाली जो परियोजना, ये पहली ऐसी फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा, और जैसे सबको मालूम है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की लीड भारत ने ली थी, और एक क्लीन एनर्जी की तरफ ये बहुत बड़ा कदम होगा, और ये मध्य प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट होगा, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है कि नर्मदा के ऊपर रहेगा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, तो इससे बहुत एक समझता हूँ एनर्जी सेल्फ रिलायंस के ऊपर, एनर्जी की जो आत्मनिर्भरता है उस दिशा में एक बड़ा सराहनीय कदम है, और इससे जितनी भी ये बिजली पैदा होगी तो करीब 240 मेगावाट सेकेंड फेज में इसमें पैदा होगी। ये प्लांट जिस तरह से पावर के में हमको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, उस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है।
यहाँ पर हम कुल मिलाकर यह समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की इन योजनाओं से मध्य प्रदेश को किस रूप में लाभ पहुंचता आप देख रहे हैं, और विशेष रूप से खजुराहो जो कि पर्यटन का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है, वहां किस तरह का परिवर्तन आएगा और क्या क्या लाभ होता नजर आ रहा आपको?
खजुराहो फेस्टिवल काफी प्रसिद्ध है, और खजुराहो में हवाई अड्डा भी है, और खजुराहो वर्ल्ड मैप पर खजुराहो को जाना जाता है अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत के लिए, और प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया कि टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, पर्यटन का, इतने सारे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं कम लागत में, और जहां पर लोग तरह तरह के रोजगार के अवसर पा सकते हैं, तो खजुराहो का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, उसके आसपास का इम्प्रूव करना, उसमें सुधार लाना, मैं समझता हूँ ये एक कदम जो है आगे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को, जिसको मध्य प्रदेश को दिल कहते हैं भारत का, और इतनी रिच वाइल्ड लाइफ है और इतना घना फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, तो इन सब को देखते हुए मैं समझता हूँ खजुराहो को और अच्छी तरह से उस क्षेत्र को टूरिज्म के वर्ल्ड मैप पर ले आने में ये काफी सहायक सिद्ध होने वाले हैं आज के प्रोजेक्ट।
श्रोताओं की ओर से विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।